आप सपनों में यकीन करते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा जैसे कि आपके सपनों में देखी हुई कोई चीज या कोई बात सच हो रही हो? कुछ थ्योरीज इसे पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल टाइमलाइन से जोड़ती हैं, मगर सच किसी को पता नहीं है। चलिए सोचते हैं कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने सपनों में एकदम अजीब हो गरीब एकदम डरावनी सी कोई घटना देखी हो, और इससे भी बड़ी बात कि आप खुद भी उस डरावनी घटना के किरदार हों, और कुछ दिनों बाद वो घटना आपको हकीकत में घटती दिखाई दे जाए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? इस कहानी के नायक अनंत का सामना भी इस वक्त कुछ ऐसे ही हालात से हो रहा है। उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसे उसने बस सपनों में देखा था। फर्क बस इतना सा था कि उस खूंखार शख्स भभूति बल्ली ने इस वक्त उसकी गर्दन पर धारदार चाकू लगा रखा था, और चाकू ने उसकी गर्दन को भेदना शुरू कर दिया था। क्या करेगा इस वक्त अनंत? वो कितनी भी कोशिश कर ले भभूति से नहीं जीत सकता था। क्या सामने बैठा बूढ़ा उसे बचाएगा या अनंत का दोस्त सुशांत उसे बचाने आएगा? वैसे अनंत ने सपने में खून भी तो देखा था। अगर आप कालशंकु दूसरा अध्याय पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया यहीं रुक जाइए। कहानी के किरदारों और घटनाओं के सीक्वेंस और इंपॉर्टेंस समझने के लिए जरूरी है कि यह कहानी शुरू से सुनी जाए। धन्यवाद। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है, और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु दूसरा अध्याय भाग 9। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। भभूति बल्ली ने चाकू को अनंत की गर्दन पर दबाते हुए कहा, चल अब तू एक वजह बता दे कि तुझे जिंदा छोड़ दूं। चाकू अनंत की चमड़ी को काटने लगा था। अनंत छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भभूति से पार पाना उसके बस की बात नहीं थी। वो बूढ़ा भी इस पूरे नजारे को गौर से देखने लग गया था। अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो भभूति से बचे। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो बोल पड़ा, क्योंकि कालशंकु किसी को माफ नहीं करता है। उसकी बात सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसने भभूति को रुकने का इशारा किया। भभूति ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो बूढ़ा अनंत के पास आया और उसका चेहरा देखने लगा। अनंत अपने गले पर चमक आए खून को अंगुली से रोकने की कोशिश कर रहा था। उस बूढ़े ने उसकी तरफ देखकर कुछ कहा। अनंत उसकी भाषा नहीं समझ पाया, इसलिए उस बूढ़े ने फिर से कहा, काई कयो? अनंत ने दोहरा दिया, क्योंकि कालशंकु किसी को माफ नहीं करता है। उस बूढ़े ने भभूति से कुछ कहा। अनंत उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, मगर वो ये समझ पा रहा था कि उसकी भाषा में राजस्थानी के साथ साथ संस्कृत जैसी किसी भाषा के शब्द भी थे। बूढ़े की बात पर भभूति ने उससे कुछ बहस करने की कोशिश की, मगर बूढ़े ने उसे झिड़क कर चुप करवा दिया और अनंत से पूछा, तने या बात कौन बताए हो? भभूति ने बूढ़े का सवाल दोहराया, तेरे को यह बात किसने बताई? अनंत ने बूढ़े की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ये बात मुझे आपने बताई थी। भभूति एकदम से चिल्ला पड़ा, साढ़े पहली बार यहां पर आया है, झूठ बोल रहा है। लेकिन बूढ़ा बीच में ही चिल्ला पड़ा, भभूति। उस बूढ़े ने अनंत के सिर पर हाथ रखा और कुछ बुदबुदाने लगा। अनंत, यहां तक कि भभूति भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद बूढ़े ने कहा, तू मां के साथ है। भभूति ने चौंक कर बूढ़े की तरफ देखा, लेकिन बूढ़े ने उसे आंखों के इशारे से अपनी बात मानने के लिए कह दिया। भभूति ने अनंत से कहा, तू भी हमारे साथ चलेगा, अब निकल यहां से। अनंत को उस बूढ़े का बर्ताव समझ नहीं आया, लेकिन वो वहां से बाहर जाने लगा। तभी बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, ध्यान रख जे, कालशंकु कोई ना माफ ना करे है, ना करे माफ। अनंत ने जवाब में सिर हिलाया और वहां से निकलकर बाहर आ गया, जहां कुछ दूरी पर सुशांत सिगरेट के कष्ट ले रहा था। अनंत को देखकर उसने कहा, आ गया, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। सुशांत की बात सुनकर अनंत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन सुशांत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शाम के करीब 7 बज चुके थे और 3 गाड़ियां उसी तरफ जा रही थीं जहां से सुशांत को कोन मिला था। सबसे पीछे तीसरी गाड़ी में सुशांत के बगल में बैठे अनंत के फोन की घंटी बज उठी। अनंत ने फोन उठाते ही कहा, राज का फोन है। हेलो राज, हेलो हेलो। ओ कट गया, नेटवर्क भी गया। तभी आगे चल रही दोनों गाड़ियां रुक गईं, इस वजह से सुशांत ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। पहली गाड़ी में से भभूति और बूढ़ा दोनों उतरकर नीचे आए और कोई पूजा करने लगे। कुछ देर में ही वहां कोहरा छाने के साथ ही मौसम बिगड़ गया। कड़कती बिजलियों, बारिश, तूफान के बीच तीनों गाड़ियां वहां से रवाना हो गईं। लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब थे कि वहां से सही सलामत निकलना अब उन्हें नामुमकिन सा लग रहा था। अनंत और सुशांत अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए कई बार इस तरह के हालात में फंस चुके थे। फर्क बस इतना सा था कि हर बार इस तरह के हालात में केवल एडवेंचर होता था, पहली बार खूंखार डाकू उनके साथ थे। पुराने दिनों को याद करके अनंत को हंसी आ गई। सुशांत भी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अनंत ने कहा, सुशांत अगर यहां से जिंदा बच निकले तो मैं सबसे पहले नलिनी को फोन करूंगा। सुशांत ने हंसते हुए कहा, साले मुझे पता था तेरा उससे चक्कर चल रहा है, मगर तू बता नहीं रहा। तभी कड़कती हुई बिजलियों को देखकर अनंत को कुछ याद आया और वो सोचने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब पहले मेरे साथ हो चुका है, मैं इस जगह इस हालात में पहले भी फंस चुका हूं। अनंत को महसूस हो रहा था कि वो ये सब वापस से जी रहा है। तभी एक तेज चमक ने उन्हें अंधा कर दिया। इस बार बिजली ठीक उनके सामने गिरी थी। ये देखकर सुशांत का हौसला भी डगमगा गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यार थोड़ी देर यहीं रुक जाना चाहिए। अनंत ने जवाब दिया, हम यहां नहीं रुक सकते हैं, हमें जल्द से जल्द ये एरिया पार करना होगा। करीब आधे घंटे बाद वो लोग वहां से आगे निकल चुके थे। यहां भी बारिश तो हो रही थी, लेकिन मौसम उतना खराब नहीं था जितना उन्हें पीछे मिला था। तभी अनंत ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, हमें वहां चलना है, उस पहाड़ पर। जिस पहाड़ की तरफ अनंत ने इशारा किया था, उस पहाड़ की चोटी से एक झरना बह रहा था। बीच बीच में चमक रही बिजली में वो झरना और वो पहाड़ ठीक उस शंकु की तरह लग रहे थे। सुशांत ने उस पहाड़ की तरफ देखा और कहा, हाँ हमें वहीं चलना है। इस वक्त सुशांत की आवाज से एनर्जी गायब सी लग रही थी, शायद इस वजह से कि उस पहाड़ पर पहले उसकी निगाह नहीं गई बल्कि अनंत की गई थी। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ ही थे कि तभी सामने चल रही गाड़ियां रुक गईं। अनंत के मुंह से निकला, ये इन्होंने गाड़ी क्यों रोक दी? सुशांत भी अपनी गाड़ी रोक चुका था। अनंत ने देखा कि पहली गाड़ी में से भभूति और उसके साथी उतर रहे थे। अनंत को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने सुशांत से पूछा, ये क्या कर रहा है? मुझे इसके इरादे कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। सुशांत धीरे से बुदबुदाया, तेरे लिए तो पूरी दुनिया में गड़बड़ी है। सुशांत के स्तंज पर अनंत ने उसकी तरफ देखा, जो इस वक्त सीट बेल्ट उतार रहा था, जैसे वो भी इस वक्त बाहर जाना चाहता हो। अनंत ने उसे रोका, क्या कर रहा है सुशांत? सुशांत को उसका यह व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था। उसने जवाब दिया, बाहर जा रहा हूं। अनंत ने पूछा, मगर क्यों? अनंत की इस बात पर सुशांत ने हिकारत से उसकी तरफ देखा। तब तक भभूति भी उनकी गाड़ी के पास आ चुका था। उसे देखकर सुशांत गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन अनंत की पुरानी यादें उसके वर्तमान पर हावी हो रही थी। उसने सुशांत को सावधान किया, बाहर मत जा सुशांत, बाहर मत जा। लेकिन उसके बात पूरी करने से पहले ही सुशांत ने दरवाजा खोल दिया। यहां तक कि उसके बोले वाक्य का कुछ हिस्सा बाहर खड़े भभूति ने भी सुन लिया। उसने घूर कर अनंत की तरफ देखा, न जाने वो क्या जताना चाह रहा था, मगर वो कुछ सेकंड के लिए उसे घूरता ही रहा, फिर अचानक से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सुशांत भी उसके साथ हंसने लगा। भभूति ने कहा, कहीं होगा बे, बैठे बैठे कांप रही है। इसके बाद भभूति सुशांत के साथ बात करता हुआ थोड़ा दूर चला गया। करीब एक मिनट में सुशांत वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। अनंत ने उससे पूछा, क्या कह रहा था वो? लेकिन जवाब देने की जगह सुशांत उस पर ही बरस पड़ा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तू यहां मेरी बेबी सिटिंग के लिए आया है? सुशांत कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसने नहीं कहा और गाड़ी पहाड़ की तरफ बढ़ चली। कुछ देर में गाड़ियां पहाड़ के पास पहुंच चुकी थी। भभूति बूढ़े के साथ उनके पास आया और सुशांत से शंकु निकालने को कहा। सुशांत ने अनंत की तरफ देखा, लेकिन इस बार अनंत ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। उन्होंने गाड़ी में से शंकु वाला बैग निकाल लिया और उसे लेकर उन लोगों के साथ पहाड़ की तरफ चल पड़े। कुछ आगे जाने पर भभूति ने सभी से रुकने का इशारा किया और अपने दो दो साथियों को पहाड़ के दोनों तरफ भेज दिया। चारों हथियारबंद लोग हथियार संभालते हुए वहां से दोनों तरफ चले गए। अनंत ने सुशांत से कहा, ये जरूर किसी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सुशांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुशांत को अनंत की हरकतें पचकानी लग रही थी। असल में वो भभूति और दूसरे डकैतों के सामने अपने आप को जरूरत से ज्यादा बहादुर और बेपरवाह दिखाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में ही वो लोग वापस आ गए और उन्होंने भभूति के कानों में कुछ कहा, जिसके बाद भभूति ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया। लेकिन बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और उन्हें कुछ देर रुकने का इशारा किया। अनंत ने अपनी घड़ी में देखा, घड़ी 10:15 बजा रही थी। सुशांत बुदबुदाया, अब ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अनंत कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन चूंकि सुशांत उसकी तरफ नहीं देख रहा था, इसलिए वो चुप ही रहा। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सुशांत ने सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालते हुए पैकेट अनंत की तरफ बढ़ा दिया। अनंत ने सिगरेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ गलत होने की अनुभूति हुई। उसने अपना हाथ वापस पीछे खींच दिया। सुशांत को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। उसने सिगरेट सुलगा ली। अनंत को उसका सिगरेट सुलगाना ठीक नहीं लग रहा था। वो सुशांत को भी मना करने वाला था कि उससे पहले ही बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, ए! उसके बाद बूढ़ा कुछ और भी बड़बड़ाने लगा। सुशांत अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अनंत ने एक झटके से उसके हाथ से सिगरेट फेंक कर जूते से कुचल दी। बूढ़ा अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था। सुशांत ने सवालिया निगाहों से अनंत की तरफ देखा। जवाब में अनंत ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो सुशांत की तरफ देखकर बुदबुदाया, ये लोग किसी की पूजा करने यहां पर आए हैं, इसलिए ऐसी जगह पर सिगरेट पीना गलत है। सुशांत उसके तर्क से सहमत नहीं था, लेकिन इस वक्त वो अनंत से उलझना अपनी शान के खिलाफ समझ रहा था। लगभग 11:15 बजे बूढ़े ने सभी से आगे बढ़ने के लिए कहा। पहाड़ की चोटी से दरार में से बह रहे झरने का पानी जहां गिर रहा था, वहां एक संकरी सी दरार दिखाई दे रही थी। अनंत ने ऊपर पहाड़ की चोटी की तरफ देखा। आसमान में तारों के बीच एक चमकीला ग्रह दिखाई दे रहा था। अनंत को महसूस हुआ कि असल में शंकु पर बने बिंदुओं के निशान इन ग्रहों के लिए बने हुए थे। वो एक टक आसमान की तरफ देख रहा था। उसने सुशांत को भी आसमान में उस ग्रह की तरफ इशारा करके दिखाया, लेकिन सुशांत इस वक्त उसकी किसी भी बात को सीरियसली लेने के मूड में नहीं था। तब तक भभूति हाथ में टॉर्च लेकर उस संकरी सी दरार में घुस गया था। उसके पीछे बाकी लोग भी उस दरार में दाखिल हो गए। जल्द ही वो वहां बनी सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ने लगे। वहां से आसमान का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। अनंत ने फिर से सुशांत को ऊपर देखने के लिए कहा, जहां आसमान में काफी तेज चमकते 3 ग्रह दिखाई दे रहे थे। सुशांत ने इस तरह ऊपर निगाह डाली जैसे वो अनंत पर कोई एहसान कर रहा हो, लेकिन ऊपर का नजारा देखकर वो भी तंग रह गया। अनंत ने धीरे से उसे कहा, उस कोन पर बने डॉट्स इन प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आई थिंक थोड़ी देर में आसमान में प्लैनेट्स ठीक उस पोजीशन में होंगे जिस पर वो कोन पर बने हैं। अनंत की बात सुनकर सुशांत भी एक बार की गहरी सोच में पड़ गया। लगभग 12:00 वो ठीक ऊपर तक पहुंच चुके थे। आसमान में 5 ग्रह दिखाई देने लगे थे। वो नजारा ऐसा था जैसा धरती पर किसी ने नहीं देखा होगा। सुशांत ये नजारा देखकर हैरान हो गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, What is this? आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 9, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।